ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज पढ़ रहे हैं हम लोग भागवत महापुराण से आठवां स्कंद अध्याय 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नाम के अध्याय से श्लोक संख्या 6 और 7। यस्मिन् बैरा अनुबंधेन व्युद्धेन विबुध इतरा बहवा लेभिरे सिद्धिम याम उहा एकांत योगिनः तेना अहम् निगृहित अस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धा च वारुणै पासै न अतिवृणे न च व्यथे। यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्युद्धेन विवृधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिम् यामो है कांत योगिनः तेनाहं निगृतो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणै पासै बद्धा च वारुणै पासै न अतिवृणे न च व्यथे न अतिवृणे न च व्यथे। यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्युद्धेन विवृधेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिम् यामोहैकान्तयोगिनः तेनाहं निगृतो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणै पासै न अतिवृणे न च व्यथे। यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्युद्धेन विदुदेतरा बहवो लेभिरे सिद्धिम् यामोहैकान्तयोगिनः तेनाहं निगृहीतो अस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणै पासै अतिवृणेन च व्यथे। थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए। और एक व्यक्ति एक श्लोक पढ़ेगा, दो श्लोक है ताकि जल्दी हो जाए। ओके।
Thank you.
माता जी यस्मिन् जिसको बैर अनबंधेना लगातार शत्रु जैसा व्यवहार करके विरुद्धेना ऐसे बुद्धि द्वारा विबुध इतरा असुर देवताओं से भिन्न देवताओं से नीच बहवा इनमें से अनेकों ने ले भीरे प्राप्त किया सिद्धिम सिद्धि याम जिसको उहा यह भली भांति ज्ञात है एकांत जोगिनः अत्यंत सफल जोगियों के उपलब्धियों के तुल्य येना अतएव अहम् मैं निगृहतास्मि यद्यपि मैं दंडित हो रहा हूं भवता आपके द्वारा भूरि कर्मणा हे अद्भुत कर्म करने वाले बद्धचा मैं बंदी हूं वारुणै पाशै वरुण के पास द्वारा न अतिवृणे मैं इससे तनिक भी लज्जित न हूं न च व्यथे नहीं मुझे अधिक कष्ट है। बात तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो परवाह है लज्जा है नहीं मैं कोई कष्ट अनुभव कर रहा हूं। तात्पर्य बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की अपितु अनेक अन्य असुरों के प्रति की गई कृपा को भी सराहा। क्योंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित की जाती है इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निस्संदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच मात्र भी भक्त नहीं थे अपितु भगवान के शत्रु मात्र थे वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया था। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में भगवान का कोई गुप्त मंतव्य था। फलस्वरूप वे भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे उससे वे न तो दुखी थे नहीं लज्जित। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो कहा जाता है कि आप क्या भगवान को देते हो भगवान ये नहीं देखते हैं, आप अपने पास क्या रखते हो भगवान यह देखते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार यहां हम लोग देखें, बलि महाराज ने क्या नहीं दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ रखे थे वे। आज उनका फ्लोर टेस्ट हुआ था, कल किसी का फ्लोर टेस्ट हुआ था ना, बलि महाराज का फ्लोर टेस्ट आज हुआ, लेकिन बलि महाराज पास कर गए फ्लोर टेस्ट में। दो पग में वो पंखा बंद कर दो, दो पग में बलि महाराज ने बार-बार जो कुछ उनके पास था सब भगवान ले लिए, ऊपर का नीचे का सब ले लिए। भगवान तो लिए, कोई कह सकता है कि प्रमाण क्या है? बलि महाराज कह सकते थे कि हां आपका ऊपर तक दिखाई पड़ा, प्रमाण क्या है कि जितना उनका संपत्ति था तब बलि महाराज ने ले लिया, क्या कुछ प्रमाण होना चाहिए ना। यहां पर किसी के पास जो संपत्ति होती है गवर्नमेंट अटैच कर लेती है, राइट, तो कुछ प्रमाण होता है। टीवी पर दिखाते हैं कि उनका यह संपत्ति अटैच कर लिया गया, ये किया गया, कुछ पहचान होना चाहिए। बलि महाराज के पास क्या प्रमाण था आप बताओ? बलि महाराज के लिए क्या, उनके पास क्या प्रमाण था कि भगवान ने सब दो पग में उनका सब कुछ ले लिया है? क्या? ओके, गंगा ऊपर से आई, एक नीचे वाला का, दैट्स वन। पहले लोग विश्वास करते थे कि शत्रु पर थोड़े से विश्वास करता है, भगवान बलि महाराज का जो मन था भगवान के चरणों में लगा हुआ था, तो जहां जहां उनका चरण गया वहां वहां उनका मन गया। हम लोग मन से बहुत कुछ देखते हैं ना, आप यहां बैठे अपने घर को देख सकते हो, मन से अपने बेडरूम देखकर आ सकते हो, उस तिजोरी में क्या रखे हो वो भी देखकर आ सकते हो, यहां बैठे बैठे ना, कहां से था? मन से। तो बलि महाराज का मन जो था भगवान के चरण में लगा हुआ था और भगवान जानते हमारा पीछा कर रहा है, तो बलि महाराज ने अपना मन दे दिया था, बलि महाराज ने अपना धन दे दिया था, लेकिन एक चीज नहीं दिए थे। मैंने कहा कि भगवान देखते हैं कि क्या नहीं दिया है। भगवान की सेवा होती है तन मन और धन, उन्होंने तन नहीं दिया था अभी तक, भगवान वेटिंग कर रहे थे उसके लिए, तन के लिए वेटिंग कर रहे, मन दे दिए थे धन दे दिए थे लेकिन तन नहीं दिए थे। अब उस तन को प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, उस तन को प्राप्त करने के लिए बलि महाराज, देखिए मन तो उसी समय लग गया था जब उनके यज्ञशाला में भगवान पधारे, बलि महाराज का मन उस समय लग गया, वो देख करके सब छोड़ दिए। वहां यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ ऐसा हो रहा था जिससे बलि महाराज का नौकरी परमानेंट हो जाए, यज्ञ हो रहा था ताकि बलि महाराज को देवराज इंद्र कभी परास्त न कर सके, फिर लड़ाई करने की कोई जरूरत ना पड़े, हमेशा के लिए राजा बन जाए, परमानेंट काम के लिए चल रहा था। लेकिन जब भगवान आए, भगवान के सौंदर्य को देख करके बलि महाराज का मन उचट गया और कहे हाय हमें क्या धुआं ताप रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं, उसको त्याग करके और भगवान का स्वागत किए, स्वागतम स्वागतम तुभ्यम, आपका स्वागत है हे बलि हे बामन, तब मैं क्या कर सकता। भगवान का दर्शन करके बलि महाराज कितने प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। तो मन लग गया था भगवान में। प्रश्न उठता है कि भगवान को ये समझे थे कि नहीं। बलि महाराज तब तक से भगवान को नहीं समझे कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान को समझे गुरु चाहिए ना, बिना गुरु को भगवान कैसे समझ सकते हैं, गुरु चाहिए। बलि महाराज का जब मन लग गया और ऐसा मन लगा कहे हे बटु ब्राह्मण यम यम वांछति, जो जो तुम मांगोगे तम तम प्रत्यक्षामी, वह वह वस्तु मैं तुम्हें अर्पित करूंगा। ऐसा मन लग गया। उसके बाद बामन देव, ये फंड रेजिंग का अच्छा तरीका है, बामन देव बड़ा अच्छा तरह से प्रचार उचार किए और बाद में तीन पग जमीन मांगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन था, एक कंडीशनल आस्किंग था। कंडीशन क्या था? अपने पैसे देना पड़ूंगा, ये कंडीशन था ना, मैं तीन पग जमीन चाहिए लेकिन मैं उसको अपने पैसों, एक कंडीशन था, एक ही स्ट्रिंग लगा हुआ था इसमें और कुछ नहीं था, अनकंडीशनल था। बलि महाराज अनकंडीशनल दान देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया कि यह मेरा इंसल्ट कर रहा है, चल तीन पग मांग रहा है। लेकिन उनका मन इतना लग गया था, भगवान में इतना लग गया था कि उनसे उल्टा सुल्टा बोला नहीं जा रहा था। गुस्सा होने के बाद भी कहते हैं अहो ब्राह्मण दयाद वाचस्तम बृहसत्तम, अरे ब्राह्मण के जात वाले, बात तो पुरनिया के समान कर रहे, खूब बुढ़े के समान बात कर रहे हैं, लेकिन बालो बालस्मती, तुम अभी बालक हो ना, तुम्हारी बुद्धि बालक के समान है, तुम नहीं जानते हो कितना मेरा हित है और कितने अहित है। एक तरह से गुस्सा हुआ लेकिन गुस्सा कर भी नहीं पाए। बाद में कहता ठीक है कोई बात नहीं, मान लो गलती ये हो गई है, एक बार फिर सोच लो, सोच कर उतना मांगो ताकि फिर दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हाय हाय, आजकल ऐसा कोई डोनर हो जाए तो कहना क्या है। हाँ राधा कृष्ण प्रभु, ऐसा कोई डोनर हो जाए हम डेली महाप्रसाद लेकर घर उठ जाएंगे। आजकल सब कंजूस काकड़ी है। लेकिन तब तक से वे नहीं समझे थे। जब उन्होंने भगवान को अर्पित करने का वचन दे दिया कि ठीक है मैं दूंगा, भगवान जब प्रवचन होगा पूरा किए बलि महाराज को, तब थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे कि भाई कोई ऑर्डिनरी बालक ये नहीं है, ये संतोष का बात कह रहा है, इतना बड़ा बड़ा प्रगाढ़ पंडित के समान ये बात कर रहा है। इस प्रकार से बलि महाराज की बुद्धि विकसित हुई। मन तो लग ही गया था, अब बुद्धि लगा रहे थे। जैसे से बनता है कि भगवान को जानने के लिए, भगवान में निवास करने के लिए, भगवान को यथावत समझने के लिए मन और बुद्धि दोनों लगाना पड़ेगा। मन लग गया भगवान में, बुद्धि नहीं लगा हुआ है तो मन चंचल है, कभी छूट सकता है, लेकिन बुद्धि लगाना। भगवान कहते हैं मई ए व मन आदस्व मनोबुद्धि निवेश, मन और बुद्धि दोनों को निवेशित करना पड़ेगा, तब हम भगवान में निवास कर सकते हैं, तब हम कृष्ण कांसस हो सकते हैं। कृष्ण कांसस मन से कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, अब तक से मैं सांख्य योग का वर्णन किया, बुद्धि योगम तमाम श्रृणु, अब मैं तुमसे बुद्धि योग का वर्णन करने जा रहा हूं जिसका तुम श्रवण करो। प्रभुपाद कहते हैं बुद्धि योग मीन्स भक्ति योग। भक्ति प्रारंभ होती है बुद्धि जब भगवान में लगे तब। तो अपने पास जो बुद्धि तो है, जब जीव लगा देते हैं भगवान में तो भगवान उस बुद्धि को पॉलिश करते हैं, हीरा को पॉलिश करते हैं, डायमंड को ना, उस बुद्धि को पॉलिश करते हैं भगवान, तो रिफाइंड इंटेलिजेंस हो जाता है, प्योर इंटेलिजेंस हो जाता है, वो सुबुद्धि हो जाता है। भगवान में लगा हुआ बुद्धि सुबुद्धि कहलाता है। और फिर जिसका बुद्धि लग जाता है भगवान में, भगवान और इंटरेस्ट खा देते हैं, दामी बुद्धि जोगम तम एन माओ प्रियंति, भगवान बुद्धि देना शुरू करते हैं। तो बलि महाराज का बुद्धि भेद हुआ कि हाँ ये कोई सामान्य बालक नहीं है, और बुद्धि से अब निर्णय किए। निर्णय जो होता है मन से नहीं होता है, मन तो चंचल है, उसका काम है एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। जो निर्णय का जो बात है वह जो है वह बुद्धि का बात है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंत बुधय अव्यवसायन, एक निश्चयता जो आती है वह आती है जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए कभी कोई गलती करता है, तुम्हारे बुद्धि कहां है समझ नहीं पा रहे हो, कहते हैं हाँ इसका बुद्धि बड़ा अच्छा है, कोई नहीं कहता मन बड़ा अच्छा है, बुद्धि अच्छा है। तो बोली महाराज अब तैयार थे देने के लिए, बिल्कुल रेडी थे, तब तक से आ गए गुरु जी। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ करके परिचय कराया, कहते हैं बैरोचेन है ना, अरे बिरोचन का बेटा, तू नहीं जानता है कौन है, यह जो बामन है बामन नहीं है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, संभल कर रहना, ये देखने में बामन है लेकिन है नहीं, ये दूसरा कुछ है। कहते हैं कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्म है, पहला बात सुन लो। दूसरा, यह जो काम करने वाला है, जो आया है मांगने के लिए, अपने लिए नहीं मांगा है, ये तो सबको देने वाला है, क्या मांगेगा, ये देने वाला है, ये मांगने वाला नहीं है, लेकिन आज मांग रहा है देवानाम कार्य साधकम, देवताओं के कार्य को सफल बनाने का। याद है ना तुम्हारा मित्र कौन है, इंद्र, समझ गए ना, तुम्हारा जो दुश्मन इंद्र है ये धन लेकर के उसको दे देगा। साक्षात विष्णु अव्यय, ये कौन है, ये साक्षात विष्णु है भाई, इसकी जगाओ, स्ट्रगल मत करो। साक्षात विष्णु अव्यय, जो चाहता वही कर रहेगा, अब तो फंस गया है। तो परिचय गुरु ने दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाव बलिहारी, गुरु आपनो गोविंद दियो। तो शुक्राचार्य ने गुरु का काम किया, भले बाद में गड़बड़ करना शुरू कर दिया लेकिन शुरू में काम किया। तो गुरु के बताने से अब समझ गए कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं, कौन है, साक्षात विष्णु अव्यय, ये साक्षात विष्णु है, कोई समान नहीं है। अब क्या कहना था बलि महाराज को, वो तो ऐसे ही मन से प्रसन्न थे, बुद्धि उनमें लगी गई थी, अब कन्विंस हो गए, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था बलि को। यदि शुक्राचार्य को जो प्रवचन किए करना ही था तो बिना बताए किए तो काम हो जाता, लेकिन बता दिए कि विष्णु है, बाद में कहते हैं नहीं देखो तभी काम चल जाएगा, झूठ बोल दो, ये कर दो, अब क्या। बलि तो वैसे भी नहीं करने वाले थे, लेकिन अब बताने के बाद कुछ नहीं हुआ, और बलि महाराज संकल्प लिए और तीन पग देने के लिए वचन दिए। और दो पग में तो सब कुछ नाप लिए, पदा एकेन मया अक्रांत भूर्लोक खम दिशा तनो स्वर्गलोकम ते द्वितीयम पश्यते स्वयं आत्मना, भगवान कहते हैं तूने देखा ना, भगवान भी देख रहे थे हमारा पीछा कर रहा है। देखो एक श्लोक को आप लोग गंभीरता से पढ़ोगे तब समझ सकते हो। कहते हैं पदा एके न एक पग से मया आक्रांतो, मेरे द्वारा आक्रांतित किया गया, कोहर किया गया, आच्छादित किया गया, नाप लिया गया, क्या भूर्लोक समस्त पृथ्वी लोक, खम आकाश, दिशा तनु, शरीर के मेरे एक पैर से, भगवान एक पैर से क्या क्या नापे थे यहां भगवान गिना रहे हैं, क्या क्या मैं नापा हूं। कहते हैं भूलोक नापा हूं और आकाश, यानी यहां से ऊपर जितना है मेरे पैर से ऊपर, मैं स्तनों तनों मतलब मैं शरीर से ऊपर जितना है मैं नाप लिया हूं। कहां तक? स्वर्गलोके ते, स्वर्गलोक तक सब नाप लिया हूं। और दूसरे पैर से नीचे इन सबको, पश्यतः ते सम आत्मना, तूने देखा ना मैं नापा, तूने देखा यानी कि मन तुम्हारा सब जगह जा रहा था। भगवान भी जानते, भगवान क्या नहीं जानते, उनसे क्या छिपा हुआ है। अब बताओ तुम्हारे वचन के अनुसार मैं सब काम किया जैसा आप कहा। अब भैया दो पैर में सब कुछ नाप लिया, तुम्हारे पास बचा ही क्या है, तुम देख लिया साक्षात। कहते हैं प्रतिश्रुतम अदातूते निरयवास इष्यते विषह त्वम निरयम तस्मात् गुरुणाम च अनुमोदित। गुरु का बात झूठा नहीं होता है, गुरु जो बात कहता है, इसलिए कहा जाता है गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करियाख्य आर ना करीबो मने आशा। उसी बात को भगवान यहां प्रतिपादित कर रहे हैं कि गुरु के बात में डाउट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा गुरु बिल्कुल ठीक बोला था, गलती तुम्हारी है कि तुम विश्वास नहीं किया। वो ठीक बोला था मैं विष्णु हूं, मैं विष्णु हूं ही। वो ठीक बोला था दो पर मैं सब नाप लेगा, वो भी ठीक है। वो भी वो ठीक बोला था कि तीसरा पैर जो कुछ नहीं रहेगा, और उतना ही नहीं कहा इसके लिए तुम अपने झूठा बन जाओगे और उसके लिए तुम नरक में जाओगे। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे गुरु जी ने कहा था। भगवान क्लियर कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू नरक में जाने वाला है, लेकिन मैं नहीं, ये तुम्हारे गुरु जी का आदेश है। गुरु मुखा पद्म वाक्य, तुम्हारा काम है गुरु का आज्ञा पालन करना। यहां पर ये सीखना चाहिए, हम लोग बिना काम के झूठ बोलते रहते हैं। बिना झूठ बोले वो काम चल सकता है, लेकिन झूठ बोलते रहते हैं। ये प्रजल्प क्या है? ये झूठ बोलना है। हम दिन भर कितना बार प्रजल्प करते हैं, हम ना ओर जानते हैं ना छोर जानते हैं, और कहना रे वो ऐसा ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर, कुछ जानते ही नहीं है। ये प्रजल्प करते रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रजल्प करने से बड़ा गड़बड़ होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में नाम हसाए। बुद्धिमान वही है जो प्रजल्प नहीं करता है, जो झूठ नहीं बोलता है। झूठ क्यों बोलने का? शास्त्र कभी भी झूठ बोलने का सम्मति नहीं देता है, फिर भी शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया यहां झूठ बोल सकते हो। जैसा कि शुक्राचार्य कोट किए थे कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है स्त्री सुनर विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे वो ब्राह्मण हिताय च, ये छह स्थान है जहां पर झूठ बोल सकते हो। एक रूल है सम एक्सेप्शन, तो ये रूल है कि सत्यम ब्रुवात, ये रूल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, केवल सत्य बोलना चाहिए, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ा बड़ा बांध बनाती है पानी का, लेकिन कहीं कहीं छोड़ती है पानी बहने के लिए, नहीं तो बांध टूट जाएगा। उसे क्या बोलते हैं पानी छोड़ने के लिए? नहीं, कोई बिहार का यहां पर है, क्या बोलते हैं उसको? तो बिहार छोड़ गया, मैं भूल गया हूं। कनवाह बोलते हैं ऐसे कुछ, तमाल जी नहीं है यहां पर, कनवाह बोलते हैं, मतलब कि साइड में छोड़ देते हैं ताकि बांध टूटने न पावे, पानी वहां से निकलता रहे। तो ईच रूल हैव सम एक्सेप्शन। तो रूल यही है, शास्त्र का रूल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एक कलयुग के शास्त्र का रूल है कि केवल झूठ ही बोलना चाहिए। यहां पर कनवा है, कभी कभी सच बोल सकते हो, कहां कहां बोल सकते हो, जब पुलिस का डंडा खाना हो तब। तो उल्टा हो गया, कलयुग हो गया है, पहले ऐसा बात नहीं था। तो वही कह रहे हैं यहां पर, भाई देखो जो झूठ बोलता है उसे नरक में जाना पड़ेगा, जो प्रजल्प करता है उसे नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रजल्प में नहीं लगना चाहिए। कौन क्या करता है, कौन क्या जानता है, सही भी कोई करता है तो भी, गलत भी करता है तो भी। भागवतम में वर्णन है इस यही आगे, प्रहलाद महाराज और भगवान दत्तात्रेय से जब बात हो रही थी तो उन्होंने जब पूछा कि आप मोटे तगड़े ऐसे ही पड़े हुए हो, आप अपना समय कैसे बिताते हो, तब उन्होंने कहा कि देखो जी मैं प्रजल्पा में नहीं पड़ता हूं, सब लोग अलग अलग विचार के हैं, मैं तो केवल भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, बस सबका कल्याण हो मैं यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सब लोग अलग अलग विचार के हैं तो एक विचार हो नहीं सकता है, तो आपके विचार से हमारा विचार नहीं मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ओपिनियन बना देंगे वो गलत है। अरे उनका विचार अलग है हमारा अलग, हम इंडिविजुअल हैं लेकिन ओपिनियन बनाते हैं, तो यही कहलाता है झूठ। तो प्लीज हम लोगों को इससे परे होना चाहिए। तो मैं प्रतिश्रुतम अदातु ते, तूने वचन दिया था ना, कहा था कि मैं तीन पग दूंगा लेकिन तुम नहीं दे रहे हो, तो निरय बास इस्यते, इसका परिणाम क्या है झूठ बोलने का? शास्त्र कहता है जो झूठ बोलता है निरय वास इस्यते, शास्त्र कहता है जो झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति नरक गामी होता है, उसका निवास कहां होता है? नरक में। तो बलि अब तैयार रहो, अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। विषम तम निरय तस्माद गुरुणाम चानुमोदित, भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये तेरे गुरु जी ने कहा था, तुम्हें याद है ना, कहते विषम या प्रवेशम तम निरयम, चलो समय आ गया और नरक में चलने का समय आ गया है। तो मानो बलि महाराज गुरु जी की तरफ देख रहे, मैं गुरु जी बचाओ क्या करना चाहिए, कहते नहीं नहीं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका परमिशन है। तस्मात गुरुनाम च अनुमोद, च मतलब वो भी कहे हैं, नहीं वो भी कहे हैं, च मतलब वही कहे हैं, अनुमोदितम उन्होंने अनुमोदित किया, चलो अब तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन भक्त लोग डरते नहीं है, भक्त लोग डरते नहीं है, बलि महाराज डर नहीं रहे थे कि नरक में जाना पड़ेगा, अरे जमराज के दूध से काम पड़ेगा, हम लोग यहां पर कुछ कर देते हैं, बड़ा बड़ा डिंग हाँकते हैं, बात करते हैं, पता चला कि रजिस्टर होगा केस पुलिस के पास, पुलिस आएगी तो पानी पसीना चूने लगता है, जाड़ा के दिन में भी है पुलिस के डर से, वो जमदूत लोग है ना तो डर लगता है, लेकिन भक्त लोग नहीं। कहा जाता है ढेंकी होता है ना, ढेंकी जानते हो ना, धान कूटने वाला ढेंकी, वो ढेंकी यदि स्वर्ग में जाएगा तो हमें धाने कूटेगा, वो उखल है ना, वो कल स्वर्ग में वहां धाम कुटेगा। तो भगत लोग जहां भी जाएंगे वहां क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यते स्वर्गम अपवर्ग नरकेशे तुल्यार्थ दर्शदी दर्शिना। स्वर्ग हो नरक हो कहीं भी जाना हो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू है, हरे कृष्ण बोलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो वचन दे करके वचन से मुड़ जाता है, वह व्यक्ति वचन दे करके जो पूरा पूरा काम करता है, जो धर्म का काम करता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन वचन दे करके जो मुड़ जाता है तो स्वर्ग तो दूर रहा कहना ही नहीं है, वरन उसको नरक में जाना पड़ेगा, और भी ब्राह्मण को देकर के। अब भगवान एक तरह से इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं बलि महाराज को कि अभी भी है तो बच सकता है, भगवान हिंट कर रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक बड़ा ही पावरफुल कहते हैं, विप्रलब्धो ददाम इति त्वयम् अहम् च आढ्यमानिनः तत् बेलिकम् फलम् मुक्तम् निरय क अति समा। देखिए नरक का बार बार बात कह रहे हैं, तीन श्लोकों में नरक का बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल बात कह रहे हैं, विप्रलब्धो तुम महाठग है, तुम महाठग है, तुमने ठगा है, तूने मुझे वचन दिया था कि मैं आपको तीन पग जमीन दूंगा, अहम च ददामी मैं दूंगा, ददामी इति मैं दूंगा, ऐसा तूने कहा था। कारण क्या था, कहते आढ्यमानिनः अपने ईश्वर पर गर्वित होने के कारण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, च आढ्यमानिनः अपने को घमंड में आकर के, धनवान होने का घमंड तुम्हें था, धनवान होने का घमंड होता है कब, रदास इधर सामने नींद आ रहा, सामने खड़ा रहो ना, धनवान होने का घमंड कब होता है, जब बहुत धन आता है, राइट, हनुमान यही बात है ना, अपने पास नहीं है, जब धन होता है तो धनवान होने का घमंड होता है। और धन कैसे प्राप्त होता है हनुमान जी, हैं, वो तो कहने के लिए है, हाँ वो भी पहले हो गया। धन कैसे प्राप्त होता है, फिलोसफी मत करो यार, असली बात बताओ, कठिन परिश्रम से, असली बातें बता रहा है, कठिन परिश्रम से। कठिन परिश्रम कौन करता है, हैं, फिर फिलोसफी ढाल रहा है, अरे फिलोसफी मत झाड़ो, असली बात बताओ ना, कठिन परिश्रम किससे होती है, शरीर से, ये बुरा नहीं यार, शरीर से, मन से कठिन परिश्रम होगा, मन से परिश्रम होता है, मन से यहां बैठे बैठे रहो धन कमा लोगे क्या, जाना पड़ेगा, हाथ पैर यूज करना पड़ेगा। तो अभिमान होता है धन से, धन प्राप्त होता है शरीर से। तो वही भगवान यहां पर हिंट कर रहे हैं कि अभी एक चीज बाकी रह गया, तुम्हारा जो तुम्हारा अभिमान हुआ है वो अभिमान हुआ है किससे, शरीर से बेटा, वो बाकी रह गया, भूल मत। बलि महाराज भी जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर चलाक है, बलि महाराज समझ गए बात को। च आढ्यमान ही नहा, तो हो नहीं लेकिन मानते हो अपने को धनमान है। तत् व्यकिलम फलम भुंक्त, तो झूठ बोल दिया अपने को अभिमानी समझ करके, झूठ बोल दिया अब तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा, जाओ कुछ साल तक आराम कर लो नरक में है, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब भगवान इतना कह दिए। अब शुक्राचार्य सॉरी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन बलि भगवा भगवता सुरा विद्यमानो अपि भिन्नात्मा प्रत आह अविकल बचह। हालांकि ऐसा लग रहा था कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बलि ने सब कुछ दे दिया है, दो पग भगवान तीन पग मांगे तक हम दो तो दे दिया ना, क्या तकलीफ है, इतना कम थोड़े है, छोटे हैं बहुत हो सकता है, लेकिन भगवान बहुत प्रकार से बलि को तिरस्कृत किए। पहले तो धन दौलत सब ले ही लिए, अब मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं भगवान की तरफ, तो झूठा है। पहले जमाने में किसी को कह दिया तो झूठा है, उम्र हार्ट अटैक होता था, आजकल कहो तो हंसेगा, अच्छा मेरा डिग्री प्राप्त हो गया, मैं झूठा हो गया, पीएचडी कर लिया। पहले जमाने में कहो कि तुम चोर है, झूठा है, बाप रे बाप मारपीट, पहले गाली गलौज इतना नहीं था, किसी को कह दो कि तू झूठा है, चोर है, बदमाश है। हमें भी याद है इस काम में कि शुरू शुरू में किसी को नॉनसेंस कह दो तो झगड़ा होता था, अब तो जो कहना है कह सको, जो गाली देना है तो कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक ठीक स्किन हो गया है, पहले नॉनसेंस कहने से जमाना बदल गया है। तो पहले जमाने में किसी को झूठ बोल देना, एक बार हमारे पिताजी यहां पर आए थे और जुहू बीच जा रहे थे वॉक करने के लिए, उनके साथ में हमारे प्रभुदास थे और असीम कृष्ण थे। असीम कृष्ण प्रभु और प्रभुदास जा रहे थे, तो प्रभुदास हमारे पिताजी को एक शब्द बोल दिए। पिताजी बड़े थे एज में, नहीं असीम बोल दिए पिताजी, प्रभुदास ने असीम बोल दिए। वो बिहार में एक शब्द है मरदवा है। वो मरदवा बोल दिए, मेरे पिताजी बहुत गुस्सा किए असीम पर कि तो हमारे बेटे से भी छोटा है, हमको मरदवा बोल रहा है, क्या समझता है अपने को। प्रभुदास बेचारे समझाने का प्रयास करेंगे, कहें तो गुस्सा एकदम सिर पर चढ़ा हुआ है, अब मेरे पास बात आया, मैं क्या कोई बात नहीं गलती हो गई, जाने कोई बात नहीं। तो एक शब्द केवल मरदवा बोल देने से इतना गुस्सा हो गए, तो आप समझ सकते हो कि पहले के जो शब्द था ये तो सज्जू का बात है। उनको झूठा बोल देना बलि महाराज को, कोई झूठा बोल सकता है, वो भी छोटा बच्चा है, बामन देव झूठा बोल रहा है, भगवान बलि महाराज जो साम्राज्य के पूरे राजा हैं, आज के दिन स्वर्ग पाताल सब कुछ उनके बस में, उनको कोई झूठा बोल रहा है। उनका बहुत तिरस्कार किए, लेकिन फिर भी प्रयास खूब किए कि इनका मन भटक जाए, लेकिन बलि महाराज का मन नहीं होगा। अभिन्न आत्मा, बलि महाराज यहां पर अभिन्न आत्मा कहा गया है। आत्मा का अर्थ मन भी होता है, बुद्धि होता है, कॉन्शसनेस भी होता है। तो अभिन्न आत्मा बलि महाराज को, उनका मन दस से मस्त नहीं हुआ, भगवान के चरण में लगा था, भगवान में लगा हुआ था। ऐसे बलि महाराज है, इनको असुर राज कहा गया है, राजा राजन बलि एवं विप्रकृत हो राजन। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यहां पर परीक्षित महाराज से, हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार से भगवान के द्वारा धिकारे जाने पर, तिरस्कृत किए जाने पर भगवत असुरा है, भगवान के द्वारा असुर राज बलि का तिरस्कार किया। लेकिन बलि कैसे थे, विद्यमानो अपि अभिन्नात्मा, विभिन्न प्रकार का कष्ट हुआ, तिरस्कार सहे, लेकिन थे कैसे बलि महाराज, अभिन्नात्मा। अब फ्लोर टेस्ट आ गया है, भगवान के बताओ कहां रखूं तीसरा पद, बार बार भगवान बोले कहां रखूं, बड़ा बड़ा डिंग आका है, तीसरा पद कहां रखूं। बलि महाराज का भगवतीय वाणी सुनिए, क्या बलि महाराज कह रहे हैं, कह रहे यद उत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो बलिकम सुरवर्जमन्यते करो नृत्यम तन भवे प्रलम्बम पदम तृतीयम कुरुशीर्षणि मे निजम। भगवान जब भक्तों को दुख देते हैं ऊपर से दिखाने के लिए, तो नीचे अपना हाथ भी रखते हैं कि भक्तों को तकलीफ ना हो, भगवान सहन करते। जैसे प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी को भगवान कितना दुख नहीं दिए, पहाड़ पर से गिराया गया, भगवान का हाथ नीचे था, हाथी के पैर तले दबाया गया, नीचे भगवान का हाथ था। तो भक्तों को विश्वास रखना चाहिए कि जब कभी भी कोई तिरस्कार हो, दुख हो, यहां पर दो शब्द आया हुआ है, विप्रकृत और विद्यमान। विप्रकृत मतलब उनके प्रकृति के विरुद्ध, वो राजा थे, उनका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन तिरस्कार हुआ। और विद्यमानों अपि, उस तिरस्कार से उनको बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद भी बलि महाराज कैसे थे, अभिन्नात्मा, तस से मस्त नहीं हुए, उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। भागवतम के एक एक शब्दों से उदाहरण हमें प्रस्तुत किया जाता है हम लोगों के लिए, वैसे ही हम लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम लोग क्या रहना चाहिए, हमेशा अभिन्नात्मा। अभिन्नात्मा मतलब दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, अवश्य राखे बे कृष्णा विश्वास पालन, ये नहीं कि भजन किया क्या फायदा, परेशानी हो गया माला रख दो उधर, मंदिर जाना बंद कर देंगे, भक्तों को तिरस्कार करेंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, अरे हरे कृष्ण वाले सब ऐसे ही हैं, सब मंदिर में ऐसे ही लोग आते हैं। ये तो भगवान टेस्ट करते हैं, टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए, जो टेस्ट में फेल हो परीक्षा में कहां पास होगा, है ना, टेस्ट होता है पहले ना, फाइनल एग्जाम से, प्रकृति का नियम है, फाइनल एग्जाम से पहले टेस्ट होगा ही, ये टेस्ट है, टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए। बलि महाराज फेल नहीं हुए, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी उनके लिए कहते हैं अभिन्नात्मा। ये अभिन्नात्मा बलि जो थे वे बोलना शुरू कर दिए, कहते हैं यह उत्तम श्लोक भवान ममेरितम, हे उत्तम श्लोक, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कृति बड़ी ही पवित्र है, आप उत्तम श्लोक हैं, आप कृतिवंत हैं, भवान मतलब आप, भवान ममे रीति बचो ब्लिकम सुरवर्ज मन्यते, हे सर्वश्रेष्ठ देवताओं के कल्याणकारक, देवताओं के पक्षपाती, देवताओं की तरफ से हमेशा लड़ाई करने वाले, या देवताओं के आराध्य देव, देवताओं के देवता, अरे आप इस भ्रम में मत रहिए कि मेरा वजन झूठा हो जाएगा, आप इस धोखा मत रहिए। कहते ब्लिकम बचो ब्लिकम सुरवर्ज मन्यते, आप ऐसे धोखे में न रहिए कि मेरा वचन जो है वो मिथ्या हो जाएगा। कहते हैं करोमी मैं पूरा करूंगा जो कहा हूं। करो मेरी तम तन भवेत प्रलंबन। हे प्रभु, आप इस प्रलंबना में मत रहिए, आप इस धोखा में मत रहिए कि मैं आपको धोखा दूंगा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। बार बार आप तीसरा पैर कहां दोगे, तीसरा पैर कहां दोगे, तीसरा पैर कहां दोगे कह रहे हैं ना, लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, में निजम, निजम मतलब अपना, आप अपना पैर या तीसरा आपका अपना जो पैर है वह आप कृपा करके मेरे सिर पर रखिए। इबली महाराज कहे फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, फ्लोर टेस्ट में पास हो गए इबली महाराज, कि तीसरा पग आप रखना चाहते हैं तो मेरे सिर पर रखे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन से धनवान बड़ा होता है। बलि महाराज धनवान हैं, कोई कह सकता है उनके पास तो कुछ भी है ही नहीं, सब तो भगवान ले चुके हैं है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु बलि महाराज ने सोचा कि संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए, इसलिए यद्यपि भगवान ने उनकी सारी संपत्ति ले ली थी तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर भगवान के तीसरे पद के लिए पर्याप्त स्थान। धन से धनवान बड़ा होता है, तो बलि महाराज धनवान थे। धनवानों के पास तो कोई कह सकता है उनके पास था ही क्या, धनवानों के पास कुछ भी ना हो तो भी वो बड़ा होता है। वो जो मरा भी हाथी होता है, कहीं गिर गया हाथी तो 10-20 लोगों को ले जाएगा, बल होता है ना हाथी में। तो ये गरीब लोग जो होते हैं थोड़ा कम मिडिल क्लास, वो लोग अपने पर्स में इतना पैसा रखते हैं, धनवान व्यक्ति 10 रुपया भी नहीं होगा, नहीं रखते हैं पैसा वो लोग। आजकल तो कार्ड का सिस्टम, कार्ड भी नहीं रखते हैं। अरे हम ही लोगों को देखिए ना, भगवान कृपा से धनवाने हैं हम लोग ना। जहां जाते हैं लोग कहते हैं गाड़ी भेज देते हैं, खाने के लिए व्यवस्था करते हैं, पैसा कहाँ खर्चा होता है, नहीं रहता है ना, 100 रुपया पड़ा रहता है एक महीना तक, खर्चा ही नहीं होता है। सेवा करने वाले कमी थोड़े है, ये मैं सही बात बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, छिपाने के लिए, सत्य बात है। अब गोपाल कृष्ण जाकर पूछ महाराज अपने पॉकेट से कल कितना पहले खर्चा किए थे बताइए, तो हिसाब दीजिए। लोग जहां जाते हैं लोग सेवा करते हैं, सेवा करने वाले कमी थोड़े है, आज सेवा लेने वालों की जोग है। अब ना जब घर पर मैं खड़ाऊंगा ना क्या, बस चार्ज करोगे क्या, अब घर पर मैं आऊंगा तो मुफ्त में खिलाओगे चार्ज करोगे, अरे खिलाओगे भी बाद में दक्षिणा भी दोगे, यही करोगे ना। देखो तो धनवान के लिए धन की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही एनफ है। तो बलि महाराज धनवान हैं, राजा हैं। चलिए एक श्लोक तो पूरा करना ही है ना। एनीवे तो इस प्रकार से बलि महाराज कहते हैं कि हे भगवान ये आपका कृपा है, अहेतु की कृपा है। विभेति नाहम निर्यात पदच्युतो, हे भगवान मैं नरक में जाऊं, जो आप बार बार कह रहे हैं नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, न विभेति अहम, मैं उसे डरता नहीं हूं बिल्कुल नरक में जाने के लिए। जो अपना वचन पूरा नहीं करता जेल में जाना पड़ेगा, न पास बंध, मैं बंधन से भी डरता नहीं हूं, न विभिन्न प्रकार के दुख से डरता हूं, न तो मेरा धन चला गया उसके लिए मेरे दुख है, ये दुख है तो असाधुवादात, मेरा जो वचन है वो कहीं झूठा न हो जाए, वही विषम उद्विजे यथा, वही मेरे मन को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा वचन कहीं झूठा न हो जाए। ये है पहले का स्टैंडर्ड जीने का। अब बलि महाराज एक तरह से यह कह करके कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए, अब टेंशन फ्री हो गए। वाह, अब जो श्लोक संख्या 3 के बाद जो बलि महाराज का बात है वह आप देखेंगे, जैसे कोई व्यक्ति टेंशन में बात कर रहा हो तो उसका चेहरा अलग होता है बात करने का, और टेंशन फ्री हो गया तो हंसते हुए बात करता है। तो बलि महाराज हंसते हुए बात कर रहे हैं, कहते हैं पुंसा श्लाघ्यतम मन्ने दन्नम अर्हतम अर्पितम यमुना माता पिता भ्रात्रा सुहृदम च आदि संति ही। हे प्रभु, ये आपकी कृपा है, ये आप हमारे पूजनीय हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि जो गुरुजन लोग होते हैं उनके द्वारा दिया गया जो दंड होता है, पूजनियों के द्वारा दिया गया जो दंड होता है, वह दंड जीव मात्र के लिए श्लाघनीय है, वह वांछित है, प्रशंसनीय है। यदि कोई सीनियर भक्त यदि आपको डांट देता है, गुरु कभी डांट देता है, तो समझना चाहिए गुरु का आशीर्वाद है, ये वैष्णव का आशीर्वाद है। यह अनाक जाके प्रजल्प करना, अरे वो हमको डांट दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, हम तो यही करते हैं ना, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं। देखो बलि महाराज कहते पुंसाम श्लाघ्यतम मन्ने, कहते मैं मानता हूं उन लोगों का अपने गुरुजनों के द्वारा दिया गया जो दंड होता है जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है। अरे ऐसा दंड तो बाप मां भी नहीं देते हैं। न च यम न माता पिता भ्रात्रा सुहृद च आदिश्यन्ति ही, मतलब निश्चय ही जो माता पिता है वह दंड नहीं देते हैं। डर लगता है, अरे आसक्ति है ना कि मेरा बेटा है, डरा थोड़ा देते हैं लेकिन उतना दंड नहीं देते हैं जितना गुरुजन देते हैं। गुरुजन के द्वारा दिया गया दंड जो है श्लाघनीय ही नहीं है, श्लाघ्यतम, अत्यंत प्रशंसनीय है, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और हे भगवान, हम असुर जाति ऐसी ही है कि हम लोग अपने अहंकार में किसी का बात सुनते तो है नहीं। असुरों का एक विशेष गुण है, वो किसी का बात नहीं सुनते हैं, वो समझते हैं मैं ही अहम, कैसे अहम भोगी बलवान, अहम भोगी बलवान सुखी है, ऐसे कुछ है ना, सोलह में थोड़ा बता दो, मैं भूल गया हूं थोड़ा। हाँ ईश्वर अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, यही उनका है ना, कौन को बोल सकता है। हिंदी में कहते हैं थेथर लोग होते हैं, थेथर जानते हो किसे कहते हैं? आप लोग कुश्ती लड़े हो कोई यहां पर, कौन हाथ रहा हो तो चतुर्भुज के अलावा किसम है, तुम और हम दोनों सूरत में लड़े थे, वो और कौन कुश्ती लड़ा है बताओ, नहीं लड़े हो, चलो यार तलासरी फार्म चलो तुम लोग सबके सब, वहां मैं सिखाऊंगा कैसे कुश्ती लड़ने का। अच्छा जो कुश्ती लड़ा है बताओ कौन कुश्ती लड़ा है, हनुमान, तो दो लोगों से। अच्छा अच्छा हनुमान ये बताओ कि कुश्ती लड़ने में कौन किसका पराजय होता है, किसका विजय होता है, इसका पहचान क्या है? दो लोग कुश्ती लड़ा ना, तो किसका हार हुआ किसका जीत हुआ पता कैसे चलेगा? मत बोलना कि रेफरी ने कहा, ए, असली कुश्ती नहीं लड़ा है। हाँ ये ठीक बोला, जिसका पीठ नीचे हो जाए और सिर ऊपर हो कहते हैं वो हार गया, पीठ नीचे आ गया। अब बताओ मालूम है थेथर लोग क्या कहते हैं? मैं थेथर बात कहा ना, वो थेथर कहते हैं जो जीता हुआ है ना उसका नाक नीचे होता है, इसका नाक ऊपर होता है, कहता देख हमारा नाक ऊपर है तुम्हारा नाक नीचे है, मैं जीता तू हारा। समझे कि नहीं कहने का मतलब? नाक तू कटाया मैं नहीं ना कटाया, हमारा नाक अभी ऊपर है, ये होते हैं थेथर लोग। तो बलि महाराज अपने ही मुंह से स्वीकार करते कि हम असुर लोग थेथर हैं, किसी को शक्ति नहीं है हम लोगों को डांटने के लिए, समझाने के लिए। हम लोग इसी अहंकार में अंधे हो जाते हैं, एक केटरर हो जाता है, केटरक ना, केटरर प्रश्न होता है ना, तो धन दौलत पुत्र परिवार नेम फेम ग्लोरी
ये सब हम लोगों को अंधा बनाता है। यो न अनेक मदांधना विभ्रसम चक्षुर आदिशत। भगवान आपने हमारा केटरल ऑपरेशन कर दिया, यह दंड दे करके आपने मेरा ऑपरेशन कर दिया, और मैं समझ पा रहा हूं कि आप कौन हैं। ये आपका कृपा है। अब भगवान के उस कृपा का व्याख्या यहां पर दो श्लोकों में किए हैं। उसी कृपा करते हैं, यस्मिन बैरानुबंधे न ब्युढ़े न ब्युढ़े न विबुधे तरा। क्या बहवो ले भी रे सिद्धि यामो है कांत जोगिनहा। कहते यस्मिन बैर अनुबंधे न ब्यूढ़े न ब्यूढ़े न। भगवत गीता के पहले अध्याय में एक शब्द आया हुआ है ब्यूढ़, किसी को याद है श्लोक? आगे बढ़ गया। दूसरा श्लोक क्या है? पश्चैताम पांडुपुत्राणाम, और पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम द्रुपद, और क्या है? एक आदमी बोलना। संजय उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता जुष्व मामका पांडवाश्चैव किम अक्रो संजय। संजय उवाच दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुजोधन असदा। व्यूढ़म, व्यूढ़म सुधाया होना। व्यूढ़ का मतलब होता है जो दृढ़ निश्चयी है। व्यूढ़ का अर्थ होता है जिसका ओर छोर एक है। व्यूढ़ का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य एक है। तो संजय कह रहे हैं दृष्टवा तु पांडव, दृष्टवा तु पांडवानेकम, ये पांडवों के ये विहुकार रचना को देखा जिसका ओर छोर एक था, जिसका लक्ष्य एक था, व्यूढ़ था, है? जिसका बुद्धि स्थिर हो गया था, स्थिर बुद्धि वाला था। हे भगवान, ऐसे लोग हैं। कौन हैं? यस्मिन बैरानुबंधे न, जो आपसे बैर रखते हैं उनका बैर अडिग होता है, मरते दम तक वो बैर रखते हैं। इसलिए यहां पर शब्द आया हुआ है ब्यूढ़े न। उनका बैर आपके साथ कैसा रहता है? मरते दम तक, मर जाएंगे लेकिन आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। ये हैं असुर। यस्मिन बैरा अनुबंधे न विबुध न विबुधे तरा। किसका? विबुध इतरा। बुध मतलब बुद्धिमान यानी देवता, विबुध मतलब विशेष बुद्धिमान, और इतरा मतलब नीचे। अब स्वीकार कर रहे हैं कि असुर लोग कैसे हैं? नीचे। देवता लोग कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। असुरों का विशेषता क्या है? उनकी बुद्धि आपके प्रति बैर भाव में ही हमेशा लगा रहता है। उनका लक्ष्य यही रहता है, खाईते पीते सुईते। कंस को देखिए, खा रहा था, वहां भी कृष्ण को देखा, पानी पी रहा था, कृष्ण को देखा, सब जगह। नारद जी बड़े खुश रहे, बात देखो कितना अच्छा है यार। जितना बैर भाव से भगवान का स्मरण होता है उतना भक्ति से नहीं होता है। नारद जी का मंतव्य, नारद जी कहते हैं कि बैर भाव से जितना भगवान का चिंतन होता है 24 आवर ए डे भगवान का चिंतन होता है। कंस देखिए परेशान था, 24 आवर ए डे कृष्ण का चिंतन कर रहा था। कैसे? बैरानुबंधे न। इसी अध्याय के शुरू में, इसी स्कंद के शुरू में ये बातें आई हैं कि युधिष्ठिर महाराज कि राजस्वाम जब शिशुपाल का मुक्ति हो गया, यह देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि हाय हाय, देखो ये जीवन भर पानी पी पी करके कृष्ण को गाली दिया है, इसकी भी मुक्ति हो गई। तो वहां पर कहते हैं जितना भगवान में तन्मय को हो सकता है बैरानुबंधे न,
उतना भक्ति के द्वारा भी नहीं हो सकता है। यस्मिन बैरार मंदे न दुढ़े न विवधे तरा, जो असुर लोग होते हैं वो 24 आवर डे भगवान के साथ बैर का गांठ बांध करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसे मूर्खों को भी, ऐसे असुरों को भी भगवान आप कितने दयालु हैं, बहवा ले भी रे सिद्धिम, ऐसे एक नहीं अनेक असुर लोग सिद्धि को प्राप्त हुए। याम उह मतलब भगवान, भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान की कैसी कृपा है। उह मतलब भगवान की कृपा का वर्णन किया जाता है, याम उह या भगवान की ही कृपा है जो कि ऐसे लोगों को जो 24 आवर ए डे आपसे बैर ठान कर रखे रहते हैं, और ऐसा बैर जो कभी अडिग है, वो डिगने वाला नहीं है, इसलिए व्युढ़ेन शब्द आया हुआ है। अरे भगवान उनको भी बहु ले भी रे सिद्धिम, इसका मतलब बलि महाराज इस शास्त्र कोट कर रहे हैं कि पहले भी बहु ले भी रे सिद्धि, बहुत लोग सिद्धि को प्राप्त किए। कैसा सिद्धि प्राप्त किए कहते हैं, एकांत जोगिना, एकांत जोगिना, जैसे एकांतिक जोगी लोग, जोगी मतलब भक्त, जो एकांत भाव से भगवान का सेवा करता है, अनन्य चिंतयंतु माम, जो एकांतिक भक्ति करता है, जो एकांतिक भक्ति कर करके जिस स्थान को प्राप्त करता है श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा जो प्राप्त करता है, ये असुर लोग आपसे दृढ़ निश्चयता पूर्वक असुर भाव रख करके उसी स्थान को प्राप्त करते हैं। मैं कहा करता हूं भगवान को प्राप्त करना है तो या तो भक्त बन जाओ और नहीं तो असुर बनो, तीसरा कोई है ही नहीं, दो ही चीज है। अब देखो अंतर है, असुर बनने में क्या करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं मांस खाना पड़ेगा, मांस के लिए बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा बेचने के लिए, शराब पीना पड़ेगा, शराब का फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, वेश्यावृत्ति करना पड़ेगा, वेश्यालय खोलना पड़ेगा, जो भी पाप करने के साधन है, जानते हैं ना पाप के साधन, नहीं जानते हैं, भागवतम वर्णन किया गया है। तो जितने पाप के साधन है वो करने जाओ, चोरी करना पड़ेगा, डकैती करना पड़ेगा, मर्डर करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा जानते हो। अब ये सब क्लेश अधिकारस्ते साम, इन सब में केवल क्लेश ही है, बहुत दुख है, लेकिन भजन करना बड़ा आसान है, माला उठाओ और जप करना शुरू करो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो च्वाइस है अपना, हनुमान च्वाइस अपना है, भक्त बनना चाहिए ना, तो भक्त बनना चाहिए तो मतलब भक्त बनना चाहिए, कहने से भक्त बनना चाहिए, और भक्त वह होता है जो भक्ति करता है, और भक्ति किसे कहते हैं, सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निवलम हिषीकेण हिषीकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति क्या कहलाता है, प्रसाद खाकर ब्रह्मचारी आश्रम में सोना भक्ति नहीं है, हृषिकेण हृषिकेश इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान का सेवा करना, यह कहलाता है भक्ति। जितना दिन शरीर में शक्ति है, देखो हमारे महाराज जी को, बलकृष्ण महाराज को, प्रभुपाद जी को देखो, जितना दिन शक्ति है एक एक बूंद खून का प्रयोग करो, नहीं तो व्यर्थ में यह देह चला जाएगा, केवल कुत्तों का भोजन बनेगा, नहीं तो अग्नि का भोजन बनेगा, और नहीं तो कीड़ों मकोड़ों का भोजन बनेगा। इस देह से इसको घसीटो, धुविया पाट लगाओ, इस पर खूब घसीटो, एवरी डे वी शुड गो आउट डिस्ट्रीब्यूट मोर एंड मोर बुक्स, गो आउट and do Harinam. These two things will fill Srila Prabhupada. Harinam and book distribution. ये लोग कहते हैं पुरुषोत्तम महीना पुरुषोत्तम महीना. पुरुषोत्तम महीना खाकर सोने के लिए नहीं है. जाओ पुस्तक वितरण करो, व्रत लो कि हम पुरुषोत्तम महीना में हजारों पुस्तक बांटेंगे. डेली हरिनाम जाओ, ये पुरुषोत्तम महीना की सार्थकता है. भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे जब गुरु प्रसन्न होंगे. इससे आप प्रसादात भगवत प्रसादो, और प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे जब उनके आज्ञाओं का हम पालन करेंगे. And Prabhupada said, if you want to please me, distribute my books. Book distribution karo. Use karo sharir ko. Ye apna nahi hai, dusre ka diya hua hai. Jante ho na? Koi vyakti gaadi de deta hai, to jab tak se petrol khatam nahi ho jata, hum usko use karte hain. Yehi karte hain na? Apna petrol bachalte hain, uska gaadi use karte hain. Chalo, jab de diya hai, itna din hai. To apna sharir nahi hai. जब इसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए यूज करो इसको. जब सांस खत्म ना हो जाए यूज करो. भगवान की सेवा में लगाओ. इसको करके इसको बर्बाद करेंगे, आराम से बर्बाद करेंगे. गाड़ी चलती रहेगी तो फिट रहेगी, गाड़ी छोड़ दो तो भंगार बन जाएगी. तो ये दें, भंगार बन जाएगा यदि इसका हम सदुपयोग न करें भगवान की सेवा के लिए. तो एकांत जोगी रहा वह है जो कि भगवान का सेवा करता है. हनुमान जी तो भक्त बन करके भगवत धाम को प्राप्त करें, न कि असुर बन करके. बन सकते हैं, इच्छा अपनी है, भगवान इंडिपेंडेंस दिए हैं, कर सकते हो. लेकिन अनफॉर्चुनेट कलयुग में असुर नहीं बन सकते हैं. मच्छर के समान आजकल के असुर हैं. पहले के असुर देखो, हिरण्यकश्यपु, रावण, ब्रह्मा जी को आना पड़ा. आप फास्टिंग कर दो, पुलिस वाले भी नहीं आएंगे, लैग ले पुलिस मिल जाएंगे. ऐसा असुर क्या बनने से फायदा. तेनाहम निगृतो अस्मि. हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यह अनुग्रह है. भवता भूरी कर्मणा, भगवान कहते हैं, भगवान आप भूरी कर्मणा है. आपके एक एक काम बड़ा ही अद्भुत है. ये जो आपने हमारे ऊपर कृपा किया है, ये भी एक अद्भुत कार्य आपने किया. हमारे कैटरर ऑपरेशन कर दिया, जो इतने घमंड में मैं घमंडी था, आपने मेरा घमंड चूर कर दिया. बहुत सुंदर काम किया भगवान आपने, बड़ा सुंदर काम किया. तेनाहम निगृहितो अस्मि, मैं आपका अनुग्रहित हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. हे भूरी कर्मणा, आपने हम पर बड़ा कृपा किया. बद्धश्च वारुण पासी, अरे आज मैं वरुण पास में बंधा हूं. चाहे आपके द्वारा जो व्यजित किया गया हूं वो हमें थोड़ा भी व्यथित नहीं कर रहा है. न च व्यथे, वो सब मुझे व्यथा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह इतना मुझ पर आज हो गया. बल्कि महाराज इतने खुश हैं, किसी को हार्ट का ऑपरेशन हो गया, उसको खुशी मिल गया कि तुमको बहुत पैसा मिल रहा है, वो भूल जाएगा कि ऑपरेशन भी हुआ है, दुख भी हो रहा है. ठीक वैसे ही बलि महाराज बहुत प्रसन्न हैं. किस लिए? भगवान के इस अनुग्रह से. भगवान का अनुग्रह है. अब बलि महाराज पूर्णतया भगवान के शरण में आ गए हैं. मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भगवान के शरण में डाल दिए हैं. तो उनका तन मन और धन, जब तीनों भगवान के शरण में आ जाता है तो भगवान उस भक्त को अपने हाथ में से दीक्षा काले शिष्य कर आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण का मतलब तन मन धन तीनों. उस समय कृष्ण उसको आत्मसात करते हैं. अब बलि महाराज को वामन देव असली में आत्मसात कर लिए. और इस बात का प्रमाण देने के लिए आगे का जो श्लोक है, जहां पर उनके दादाजी आए हैं प्रहलाद जी, वो श्लोक आप लोग कल सुनना. धन्यवाद. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न, क्वेश्चन, कमेंट? यस, माइक दो. अब थोड़ा पंखा चालू कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, भय एक कांस्टेंट कंपेनियन, एक हमारा एक अंतरंग साथी के साथ रहता है हमें, या भविष्य का डर होता है, या फिर धन का, परिवार का, या अल्टीमेटली मृत्यु का डर तो होता ही है, भय तो लगा ही रहता है। पर भक्तों को ऐसा 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 हमने अभी सुना कि भक्तों को डर नहीं होता, तो ये उनके पास ऐसी क्या चीज है, क्या ऐसी वस्तु है, या क्या ऐसा चीज, क्या ऐसा ज्ञान है जिससे कि भक्तों को डर नहीं। यहाँ कहा है कि डिवोटीज डू नॉट फियर इवन गोइंग टू हेल्प।
तो आपके बच्चे हैं? कितना बड़ा बच्चा है?
5 साल का।
चलता है ना? आप मम्मी मॉल तो है ना, मम्मी मॉल है ना, आजकल नया नया मॉल आ गया है ना।
हाँ।
तो आप कभी बच्चों को मॉल में लेकर के जाना, आपके साथ में रहेगा, और यदि कुछ नया वो खिलौना देखने लगे और आप मॉल के उस साइड में चले जाओ,
ओके,
जब आपके साथ में बच्चा था का, डैडी ये भी खरीद दो, ये भी खरीद दो, ये भी ले लो, ठीक है ना, कितना खुश था, खुश था ना। लेकिन जब आप अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए मॉल को उस साइड में चले जाए बच्चा को छोड़ करके, बच्चा के पिताजी तो नहीं है, तो क्या खुश रहेगा? क्या करेगा?
रोएगा,
रोएगा ना। क्यों रोएगा? भय है कि पिताजी नहीं है। जब पिताजी हैं तो भय नहीं है, पिताजी नहीं है तब भय है। तो भक्त लोग हैं, नारायण परायण हैं, और पिताजी के साथ में हैं, लेकिन भय नहीं। समझ गया कि नहीं? भक्त लोग नारायण परायण हैं, नारायण परा सर्वे न कुतस्तन दिब्बते। जो नारायण परायण है उसे भय नहीं है, जो नारायण परायण नहीं है उसको भय है। माया के दास सदा उदास, और कृष्ण के दास बिंदास। बिंदास वे हैं जो कृष्ण के दास हैं। कीप इट अप, चैन। हरे कृष्ण।
धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण। यस,
हरे कृष्ण भाई जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो जी, आपने बताया कि बलि महाराज को इतना संपत्ति था, इतना धन था उनके पास, इसकी वजह से उनको घमंड हो गया। तो प्रभु जी, हम अपने
मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, माइक नीचे कर बोलो ऐसे ही। वेरी गुड क्वेश्चन। इनका प्रश्न है कि बलि महाराज के पास इतना धन था, धन के चलते उन्हें अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था। हम लोग भी अपना सेवा करते हैं, बुक रिसेप्शन हो या जो भी सेवा करते हैं, जब सक्सेस मिलता है तो सक्सेस से हम लोगों को कभी कभी घमंड हो जाता है। तो उस घमंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक मैं उदाहरण देता हूँ प्रभुपाद जी का, उसे आप समझ सकते हो। एक बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और भक्त लोग थे, तो प्रभुपाद अनायास ही पूछे तमाल कृष्ण महाराज से कि तुम में और हम में क्या अंतर है, तुम में और हम में क्या अंतर है। तो लोग कई एक उत्तर दिए। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम में और हम में यही अंतर है कि तुम माया में गिर सकते हो, लेकिन मैं माया में नहीं गिर सकता हूं। अभी ताली मत बजाओ, सुनो पहले पूरा। प्रभुपाद ने कहा कि तुम माया में गिर सकते हो, लेकिन मैं माया में नहीं गिर सकता हूं। भक्त लोग के जाय श्री प्रभुपाद की जाय। दूसरे दिन दर्शन आरती में प्रभुपाद जी आए, भक्त लोग भी आए, तो प्रभुपाद जी भगवान से कुछ बात कर रहे थे। तो भक्तों ने देखा, तो भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप भगवान से क्या कह रहे थे? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मेरा रक्षा करना, मैं माया में न गिरने पाऊं। तो वाल्मीकि महाराज, अरे अरे आपने तो कल कहा था कि मैं माया में नहीं गिर सकता हूं। प्रभुपाद ने कहा कि मैं नहीं गिर सकता हूं इसलिए क्योंकि मैं डेली भगवान से प्रार्थना करता हूं। अब ताली बजा सकते हो। ये मेरा बात नहीं, प्रभुपाद जी का था, प्रभुपाद जी के विचार व्यक्त हो। तो प्रभुपाद जी कहते मैं डेली प्रार्थना करता हूं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है, आप डेली प्रार्थना किया करो, कहे प्रभु किसी प्रकार का अभिमान मुझमें ना आ जाए। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। अभिमान दूसरों को दबाने का काम आता है, वो एक अस्त्र होता है दबाने के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यस, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरिर्भक्ति उत्पादाय कल्पते। यदि समाज में है तो समाज में रह करके समाज का नियम कानून पालन करते हुए भक्ति करो तब तो ठीक है, लेकिन समाज के नियम कानून को ताक पर रह करके एकांतिक भक्ति भी करो तो समाज में उत्पात उत्पन्न करने वाला है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना बिना नियम कानून पालन किए हुए कहो कि मैं एकांतिक भक्ति करता हूं तो वह भक्ति केवल उत्पात खड़ा करेगा। तो सब नियम पालन करते हुए तो वही उत्पात खड़ा कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको चाहिए नियम कानून पालन करना।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान से दुश्मनी करने से हम जल्दी भगवत धाम जा सकते।
तैयार हो?
नहीं, नहीं, हम तो तैयार नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। हम दुश्मनी करना नहीं चाहते, दुश्मनी कर भी नहीं सकते, क्योंकि सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग था वो वैसा था, उससे भगवान को भी आना पड़ता था मानने के लिए। लेकिन अभी तो आलतू फालतू टप्पर लोग भी हमको मारता है, हम दुश्मनी करेंगे तो
वही भगवान ही है।
नहीं नहीं,
कोई आपको नहीं मार सकता ऐसे भगवान संगसन न करें तो, ये भूल जाओ, ये डरो मत कभी, लेकिन उत्पात मत करना, भजन करना। चलो क्या प्रश्न, क्या है प्रश्न? कुछ नहीं है ना, हो गया हो गया हो गया हो गया।
हरे कृष्ण भाई जी, प्रभु जी जैसे यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी इसमें जैसे शुक्राचार्य जो गुरु हैं, तो गुरु जो होता है वो भगवान का अनन्य भक्त होता है और भक्त को भगवान के सेवा में लगाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो भक्त को भगवान से दूर कर रहे थे, तो गुरु का पदवी कैसे प्राप्त होंगे?
कई एक प्रकार के गुरु होते हैं, इनको पुरोहित कहा गया है। ये कृष्ण के शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्त नहीं थे, ये जैसे पहले परिवार में गुरु होते थे, पारिवारिक गुरु थे, फैमिली प्रिस्ट प्रभुपाद जी कहते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है? लो, ये कहते हैं आपने झूठ पर बहुत फोर्स कर दिया, झूठ नहीं बोलने में मैं फोर्स किया। हाँ,
झूठ नहीं बोलने में फोर्स किया। हाँ, तो अभी हम किसी को सहायता या अपने सहारा के कार्य, अपने बचाव के कार्य के लिए झूठ बोलेंगे तो उसमें भी हमें पाप लगेगा और नर्क में जाएंगे।
देखो कहा गया है कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हो, याद रखना कभी काम आएगा। स्त्री सु पति पत्नी के बीच में बात हो रहा, चलो हम तुमको बॉम्बे घुमाने ले जाएंगे, सीएल वेल ले जाएंगे, नहीं लेकर गया तो कोई बात नहीं, वो झूठ चलता है। नरम विवाहे च, विवाह से पहले, तू कहाँ के हो? हाँ, तो असली जगह का है, झारखंड का है, तो बिहार ही जानते हैं, पहले बिहार में था। तो वहां पर विवाह से पहले क्या कहते, लड़का मैट्रिक फेल, अरे तो बीएससी पास कर गया है, पता है ना, दूसरे का दो चार दस गाय बल अपने द्वार बांध गए, सब अपना ही है, कहते हैं उतना नहीं। शादी में वो लड़की काली है, दूसरे का कोई अच्छी लड़की उसे दिखा देंगे, अपनी भी बेटी है इसी गाड़ी का, जानता है ना। तो इसे कहते हैं नरम विवाह है, विवाह से पहले, बाद में गर्म विवाह हो जाता है लेकिन पहले नरम होता है। तो स्त्री सु नरम विवाह है, विवाह में झूठ कभी बोल दिया तो झूठ नहीं माना जाता है। स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्यार्थे, वृत्यार्थे रोटी कपड़ा मकान के लिए, एक का दो में बेचो, एक का सौ में मत बेचो, दाल में नमक डालो, नमक में दाल मत डालो, किसी काम का नहीं रहेगा। वृत्यार्थे प्राण संकटे, जब प्राण संकट में हो तब झूठ बोलना, जब लाइफ और डेथ का बात है तब झूठ बोलना, नहीं कि थोड़े थोड़े कभी झपड़ मारेगा इसे झूठ बोलते नहीं, डांटेगा इसे झूठ बोलते नहीं। प्राण संकट और गो ब्राह्मण हिताय च, गो माता का रक्षा करने के लिए झूठ बोल सकते हो, वैदिक संस्कृति का रक्षा करने के लिए झूठ बोल सकते हो, छह स्थान है जहां तुम झूठ बोल सकते हो। और कोई प्रश्न? यस, माइक फेंको उधर, दो चालू है कि नहीं देखो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरुआत में आपने बताया कि बलि महाराज का मन भगवान के चरणों में था, इसलिए उनको पता चला कि भगवान के चरण कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने कितना नापा है। तो ये आज का सबसे सुंदर और शिक्षाप्रद वाक्य था। और उसके बाद इसी संदर्भ में आपने थोड़े देर के बाद बताया कि जब भगवान बता रहे हैं बलि को कि मैंने पहले पग में भूलोक नाप लिया, आकाशलोक नाप लिया, दूसरे पग में भूलोक नाप लिया, ये उन्होंने उनको बताया। और आकाशलोक के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं स्वर्गलोक तक नाप लिया। इसमें भी ठीक उसी प्रकार का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रहस्य है। भगवान ने वहां पे निर्धारित कर दिया असुरों के लिए कि आपकी एबिलिटी सिर्फ स्वर्ग तक ही है, क्योंकि स्वर्ग के ऊपर जो ब्रह्मलोक, शिवलोक या वैकुंठ लोक है, वहां सिर्फ भक्त लोग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पहुंच सकते हैं। तुम असुरों का निर्धारण पहुंचने का खाली स्वर्ग तक है, ये वहां पे तथ्य छुपा था। और जब इसमें अगर मैं प्रश्न एक आपका मैंने खड़ा करूं तो एक प्रश्न आता है तीसरे पद के लिए, तीसरा पद के लिए एक प्रश्न आता है। प्रश्न के पहले एक छोटा सा मैं अपनी सच्ची घटना बता रहा हूँ कि मैं नरसिंह अवतार के दिन घर में एक मेरी छोटी सी बच्ची है, फोर्थ क्लास में पढ़ रही है, तो उसे बोलती पापा कुछ सुनाओ, तो मैंने हिरण्याक्ष का और हिरण्याकश्यपु का थोड़ा सा स्टोरी बताया उसको। तो मैंने जब जैसे ही बताया उसको कि हिरण्याक्ष इतना ताकतवर था कि वो उसने पृथ्वी को जल में डुबा दिया, तो फटाक से वो प्रश्न करी, पापा अगर वो पृथ्वी को धरती को जल में डुबा दिया तो उसका घर और वो भी तो डूब जाएगा, वो कहाँ खड़ा था? तो मैंने भी हार नहीं मानी, तुरंत बोला, मैंने कहा वो इतना ताकतवर था, कई लोकों पे उसका कब्जा था, हो सकता है वह दूसरे लोक पे खड़ा होकर पृथ्वी लोक को डुबाया हो। तो ऐसा मैंने कहने का मतलब, आज के छोटे बच्चे भी काफी शार्प माइंडेड हैं। तो उसी तरह से जब हम ये कहानी अगर उस बच्ची को सुनाएंगे बलि महाराज का कि दो पग में उसने पृथ्वी और आकाश को नाप लिया, तो हो सकता है फिर वो प्रश्न करे कि जब पृथ्वी को नाप लिया तो बलि महाराज भी तो पृथ्वी का ही हिस्सा थे, उसी पे खड़े थे, तो वो भी नप गए, फिर तीसरा पद के लिए उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया?
नहीं, वो नाप तो भगवान जरूर लिए सब कुछ। भगवान जो जुआ में जुआड़ी हार जाता है सब कुछ, जैसे युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए थे, लेकिन उनका जो शरीर है उस पर उनका अधिकार है। शरीर अब तक नहीं हारे हैं। आप एक सेकेंड के लिए कह सकते हो कि वो जो जमीन था वो बलि महाराज बामन देव का हो गया था, लेकिन बामन देव के जमीन पर भी शरीर तो बलि का ही था ना। भले जमीन उनका हो गया है, शरीर नहीं उनका हुआ है। अब समझ रहे हो ना? मान लो कि वहां पर समझ लो कि वो टेनेंट के रूप में है, यही मान लो, जो भी मान लो, वो सब कुछ हार गए हैं, सब कुछ भगवान ले लिए हैं, लेकिन शरीर अभी तक कहीं लिए हैं।
इसको भी और ढंग से कहा जा सकता है कि जमीन को दूसरे पर्यायवाची शब्दों में क्षेत्र कहा जाता है, और शरीर भी एक क्षेत्र है आत्मा का, तो वो भी अपने आप में स्वतंत्र है, इसको और अच्छे ढंग से कहा जा सकता है।
खैर, वहां पर ये बात नहीं था, वहां पर सिंपल था कि भगवान देखे कि अपना ये मन दे दिया है, धन दे दिया, वेतन ही बाकी रह गया है, और भगवान लेना चाहते थे, तो बाल का खाल न निकाला जाए तो वही अच्छा है। और कोई प्रश्न? यस, सुंदर चेतन प्रभु
ग्रेट थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास प्रभु जी दिस जब भी कुछ तकलीफ आता है बाहर के लोगों को और भक्तों को तो तकलीफ तो सेम ही दिखता है तो बाहर के लोग बोलते हैं कि देखो भक्त भी तकलीफ में है हम भी तकलीफ में हैं लेकिन सिर्फ भक्त ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हाँ भगवान है तो उनको लगता है कि ये तो एक तकलीफ से भागने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मन को समझा लेते हैं कि हाँ ठीक है तो ऐसा तो ये कैसे
प्रभुपाद उदाहरण दिए है ना कि जेल में कैदी भी होता है और कभी कभी सुपरिटेंडेंट मिल जाता है तो कैदी नहीं यार देखो ये भी आ गए यहां पर कैदी सोच सकता है ना कि हम भी यहां पर अभी आ गए वो कैदी नहीं है वो अपनी इच्छा से आया चला जाएगा तो वैसे ही जो दुख आता है राजन प्रभु आ गए जो दुख आता है भक्तों पर और बाहर के लोगों पर अंतर इतना ही है कि बाहर के लोग भगवान के प्रति द्वेष भाव रखते हैं भगवान हमको ऐसे कर दिया और भक्त लोग इसे कृपा समझते हैं भगवान का एक कृपा है भगवान हमको दुख दिया है ताकि हमारा कुछ कर्जा चुक जाए हल्का हो जाऊं दुख से भक्त लोग कभी डरते नहीं है जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भी दुख आए उस पर पैर रखो आगे बढ़ो फिर दुख आए पैर रखो आगे बढ़ो फिर दुख आए पैर रखो आगे बढ़ो इस प्रकार से क्या होगा एक दिन होगा कि ये दुख है आपके लिए स्टेयर केस बन जाएगा कहां जाने के लिए बैक होम बैक टू गॉड है इस संबंध में मैं कथाना कहा करता हूं धुबिया वाला एक धुबिया था उसको एक बुड्ढा गद्दा था भगवान से प्रार्थना कभी मर जाए कब मर जाए एक कुआं था धुबिया के पास जगह कम था कुआं भी सूख गया था पानी नहीं था एक दिन वो गद्दा बुड्ढा हो गया था दिखाई नहीं पड़ा वो कुएं में गिर पड़ा अबे धोबी गांव वालों गद्दा चिल्लाने लगा रेंगने लगा बचाने के लिए अब धोबी भागते भागते आया देखा गिर गया है नीचे कुछ समय के बाद वो गद्दा रेंगना बंद कर दिया चिल्लाना बंद कर दिया धोबी समझा कि मर गया भगवान से पता है भगवान अच्छा हुआ हमारे पास जमीन कमी थी कुआं से भी सूख गया था गद्दा को पालन करना था अच्छा हुआ इसको हम समाधि यहीं दे देते हैं वो गांव वालों को बुलाया गांव अपना फावड़ा उड़ा लेकर के आए और पानी डाल उस पर धूल डालना शुरू कर दिए गद्दे के ऊपर जब धूल डालना शुरू कर दिए उसके ऊपर तो गद्दा सोचा रे मैं तो इन लोगों को हेल्प के लिए पुकार रहा था ये तो हमको मार डालेंगे जे धूल डाले अपना शरीर हिला दिया मिट्टी नीचे गिर गया फिर धूल डाले शरीर हिला दिया मिट्टी नीचे चला गया फिर धूल डाले शरीर हिला मिट्टी नीचे एक ऐसा समय आया कि सब मिट्टी नीचे और गदा ऊपर आ गया तो ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड विल कीप थ्रोइंग डस्ट ऑन अस शरीर हिला दो माया के कामे है दुख देना माया सुख कहां देगी कल दुख देगी शरीर हिला दो फिर माया से ऊपर आ जाओगे माया से जिसको ऊपर आना है शरीर हिलाना पड़ेगा यानी मंगला आरती आओ डेली अपना जप करो अच्छा तरह से भागवत कथा सुनो प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ो और पुस्तक वितरण करो हरिनाम करो ये सबसे माया से दूर होने का तरीका है ऑलराइट सो स्टॉप हियर ग्रंथ राशुन भागवतम की जाय श्रील प्रभुपाद की जाय